नमस्कार भारत, 7 जुलाई दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। विधायकों के इस्तीफे से मुश्किल में कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस सरकार, क्या कामयाब होगा ऑपरेशन कमल 4.0? वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, मेजबान इंग्लैंड से होगा डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला।
सेमीफाइनल नहीं, फाइनल हम लोग जीत रहे हैं, फाइनल इंडिया
जीतेगा। और खास रिपोर्ट में उन मजदूरों की बात जो परिवार पालने के लिए झेलते हैं 50 डिग्री का टॉर्चर।
रोड आग उगलता है, जब रोड पे इतनी लपटें जैसी लगती है, ऊपर से लू चलती है, सुबह शाम जरा हमारा काम आता है, उससे अपने मजदूरी करते हैं, बच्चे पालते हैं।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबलों की सूरत तय हो गई है। कल खेले गए आखिरी राउंड लीग मुकाबलों में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 10 रनों के अंतर से हराया। लीग राउंड के बाद अंक तालिका में पहले स्थान पर रही विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल में चौथे नंबर पर रही न्यूजीलैंड टीम से भिड़ेगी। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच 9 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा, वहीं दूसरा सेमीफाइनल 11 जुलाई को बर्मिंघम में होगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी परमाणु समझौते को बचाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ बातचीत की संभावनाएं तलाशने के लिए राजी हो गए हैं। 2015 में हुए परमाणु समझौते के टूटने की स्थिति में बनने वाले हालातों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल रूहानी से फोन पर तकरीबन 1 घंटे तक बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ईरान के साथ परमाणु करार तोड़ दिया था और उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मई में यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया था और कहा था कि वो इसका इस्तेमाल रिएक्टर के लिए ईंधन के रूप में करेगा। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में हजारों की संख्या में लोगों ने एक बच्ची के साथ रेप के मामले में जल्द सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारी इस मामले को लेकर बहुत ढीला रवैया अपना रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में शामिल एक महिला एल मोनको ने कहा, मैं एक माँ हूँ और मेरी एक बेटी है, मैं नहीं चाहती कि इस तरह का अन्याय हो। मैं यहाँ सच का साथ देने आई हूँ और चाहती हूँ कि बच्ची को कानून के हिसाब से न्याय मिले। ये थे प्रदर्शन में शामिल एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिकी दूत जालमी खलीलजाद ने कहा है कि अफगान तालिबान के साथ बातचीत अभी तक बेहद सकारात्मक रही है। ये बातचीत मंगलवार को फिर शुरू होने की उम्मीद है। तालिबान ने सरकार के साथ औपचारिक बातचीत करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अफगान प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक सदस्य पूर्व वित्त मंत्री उमर जखिलवाल ने बीबीसी को बताया कि बातचीत अब भी जारी है। जखिलवाल ने कहा, बहुत समय नहीं बीता जब तालिबान सरकार के साथ बातचीत तक के लिए तैयार नहीं थे और अब वो मुलाकात के लिए राजी हैं। हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं और हम इसे ऐसे ही देख रहे हैं। हम इसकी तुलना ऐसे कर रहे हैं कि जहां आज हम खड़े हैं, कई महीने पहले कहां थे, और मैं समझता हूं कि हम निश्चित तौर पर एक कदम आगे हैं। ये थे अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री उमर जखिलवाल के शब्द। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। अधिकारियों का कहना है कि भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मैक्सिको पुलिस ने एक मकान में कैद 24 अप्रवासियों को बचाया है। मध्य अमेरिकी देशों के ये अप्रवासी मकान में 3 हफ्तों से कैद थे। इन लोगों को भरोसा दिया गया था कि उन्हें मैक्सिको अमेरिका सीमा पार कराई जाएगी। इसके बदले अप्रवासियों के रिश्तेदार गिरोह के सदस्यों को लगातार पैसा दे रहे थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव।
सेमीफाइनल में फाइनल हम लोग जीत रहे हैं, फाइनल इंडिया जीतेगा, फाइनल जीत के सेमीफाइनल तो छोड़ दीजिए, फाइनल जीत रहे हैं।
क्यों इतना यकीन क्यों है? मेरी सुनिए,
एकदम यकीन है, उस हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं। 130 करोड़ देशवासियों का एक्सपेक्टेशन है, हम एकदम इंडिया फाइनल।
ये जोश है भारतीय फैंस का। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से मात दी और लीग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हरा दिया। इन दो मैचों के साथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबलों की तस्वीर भी साफ हो गई है। पहले सेमीफाइनल में 9 जुलाई को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, वहीं 11 जुलाई को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने होगी मेजबान इंग्लैंड की टीम। वर्ल्ड कप को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले बात कर्नाटक की जेडीएस कांग्रेस सरकार के संकट की। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के करीब एक दर्जन विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार मुश्किल में घिर गई है। माना जा रहा है कि 12 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी राज्य की कुमार स्वामी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इन परिस्थितियों में एक और सवाल सामने है कि क्या कर्नाटक के गठबंधन की खस्ता स्थिति देश में गठबंधन राजनीति की विदाई का इशारा कर रही है। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटक का कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के 12 विधायकों का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना एक तरह से चकित करने वाला था, हालांकि 5 दिन पहले इसके आसार दिखाई दिए थे। फिर भी जब इनमें से पहले 8 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के दफ्तर में प्रवेश किया और वहीं स्पीकर रमेश कुमार के इंतजार में बैठ गए तो मामला गंभीर होता दिखा। जब विधायकों को पता चला कि स्पीकर रमेश कुमार वापस नहीं आने वाले हैं तो उन्होंने अपना इस्तीफा उनके दफ्तर में पेश किया और सीधे राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाकात के बाद विधायक एएच विश्वनाथ ने पत्रकारों से कहा,
ಪಾಲುದಾರ ಪಕ್ಷಗಳಾದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್
हम 14 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को हमारा इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो मंगलवार तक फैसला लेंगे। इस्तीफा देने का कारण ये है कि गठबंधन सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई है। इस गठबंधन सरकार ने हर किसी को विश्वास में नहीं लिया है, जिससे हमें चोट पहुंची है, इसीलिए हमने इस्तीफा दिया है। ये थे एच विश्वनाथ के शब्द। विश्वनाथ वही हैं जो पिछले हफ्ते तक राज्य जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके अलावा जो 13 अन्य विधायक हैं वो अलग अलग कारणों से इस्तीफा दिए हैं। इन 13 में से 8 सदस्य वही हैं जो पिछले दिसंबर से मुंबई के होटल में इकट्ठा हुए थे ताकि सरकार गिर जाए, लेकिन बाकी 5 सदस्य ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पक्ष के या पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के राजभक्त हैं। उनकी शिकायत मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी और जेडीएस के मंत्रियों के खिलाफ है जो उनके क्षेत्रों में विकास के कामकाज के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। लेकिन 14 महीनों की गठबंधन सरकार की गतिविधियों से सवाल ये उठ रहा है कि क्या गठबंधन सरकारों का जमाना बदल रहा है, खासकर जब केंद्र में एक मजबूत सरकार आई हो, जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद संयुक्त विधायक दल की सरकार कई राज्यों में गिर गई थी। धारवाड़ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हरीश रामास्वामी ने बीबीसी को बताया,
The elections after Modi's 2019 has clearly indicated that the parties in India have lost their credibility.
एक तरह से देखे तो हाँ, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि विरोध पक्ष के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। विरोध पक्षों में ना तो क्षमता है ना ही विश्वसनीयता है। ये थे प्रोफेसर हरीश रामास्वामी के शब्द। गठबंधन सरकारों का देश में प्रवेश हुआ था 1967 में, जब स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस कमजोर हो गई थी। जब इंदिरा गांधी ने मजबूत सरकार केंद्र में बना लिया तब गठबंधन सरकारें कमजोर होती गईं। राजनीतिक विश्लेषक महादेव प्रकाश ने कहा,
कोएलिशन पॉलिटिक्स एक्चुअली 1967
प्रारंभ आई। कर्नाटका में ये तीसरा प्रयोग है गठबंधन सरकार बनाने का। हाल ही में हुए लोकसभा के चुनावों में लोगों ने राजनीतिक पक्षों के गठबंधन को खारिज कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें सिर्फ एकल पक्ष का शासन चाहिए। ये थे महादेव प्रकाश के शब्द। बहरहाल बीजेपी को सरकार बनाने के लिए और 8 विधायकों की जरूरत है। अभी बीजेपी के पास 105 सदस्य हैं। ऑपरेशन कमला 4.0 का मकसद ये है कि 224 सदस्यों की विधानसभा की शक्ति ही 2008 तक ले आएं ताकि बीजेपी के पास आधे से ज्यादा सदस्य विधानसभा में हो। इसका मतलब यही है कि वो 12 जुलाई को विधानसभा की बैठक शुरू होने के दिन ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकें और कुमार स्वामी की गठबंधन सरकार को निकाला जा सके। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यूरोपीय देशों से आग्रह किया है कि वो परमाणु संधि को बचाने के लिए पहल करें। उन्होंने इसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बात की है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने बुधवार को ईरान के मुद्दे पर बैठक बुलाई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश उप्रेती। जी दिनेश जी।
जी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी परमाणु समझौते को बचाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ बातचीत की संभावनाएं तलाशने के लिए राजी हो गए हैं। दरअसल 2015 में अमेरिका समेत 6 देशों के साथ ईरान का परमाणु करार हुआ था और इस परमाणु समझौते के टूटने की स्थिति में बनने वाले हालातों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल रूहानी से फोन पर तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की है।
यानी बड़ी लंबी बातचीत हुई है।
जी, मैक्रों ने कहा कि वो समझौते के कमजोर होने और इसके संभावित नतीजों को लेकर बेहद चिंतित हैं। दोनों राष्ट्र प्रमुख 15 जुलाई तक इस मामले में सभी पक्षों के साथ बातचीत का माहौल तैयार करने पर राजी हो गए हैं। हालांकि ईरान ने परमाणु समझौते में शामिल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस को आज तक का ही वक्त दिया था कि वो इस समझौते को अमल में लाने का अपना वादा पूरा करें। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल ईरान के साथ परमाणु करार तोड़ दिया था और उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मई में यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया था और कहा था कि वो इसका इस्तेमाल रिएक्टर के लिए ईंधन के रूप में करेगा। यही नहीं, माना जा रहा है कि ईरान दबाव की रणनीति के तहत यूरेनियम संवर्धन उत्पादन में और बढ़ोतरी का ऐलान आज कर सकता है।
जी, दोनों तरफ से तनातनी बनी हुई है, खासतौर पर ईरान और अमेरिका के बीच। बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं, ये सवाल किया हमारे साथी अभिमन्यु कुमार साहा ने JNU के प्रोफेसर AK पाशा से।
इसमें 3 पहलू हैं। एक तो बायलैटरल रिलेशंस, आपसी अबू धाबी और नई दिल्ली के बीच में दो बढ़ते हुए ताल्लुकात पिछले 3.5 साल से हो रहे हैं, उसकी प्रगति काफी तेजी से हो रही है जो कि पिछले 30-40 सालों में नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और सियासी रिलेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग डिफेंस कोऑपरेशन में काफी पिछले 3 सालों से हुई है मोदी सरकार के आने के बाद, उसको और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी।
मार्च में OIC की बैठक हुई थी UAE में और भारत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और उस बैठक में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है पाकिस्तान में उसका मुद्दा उठाया था। क्या आपको लगता है कि जो बैठक शुरू हो रही, जो मुलाकात शुरू होगी, उसमें इस पर कोई बात हो सकती है?
मेरे ख्याल से जरूर होगी, क्योंकि भारत ये उम्मीद करता है कि नारात अपने ताल्लुकात पाकिस्तान से जो अच्छे हैं तो वो अपना असर और रसूख यूज करके जो भी आतंकी ग्रुप हैं, चाहे जैश मोहम्मद या हाफिज सईद या लश्कर तोयबा या दूसरे अन्य टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वहाँ, जो मिलिट्री या ISI के सपोर्ट से जो भी आतंकी काम कर रहे हैं और कश्मीर पे भी जो हमले होते रहते हैं, सपोर्ट होता रहता है और बयाने दिया जाता है, तो उन सबको लेके भी बहस होगी, बातचीत होगी। लेकिन उसमें हमारा जो है कुछ खास उसमें प्रगति नहीं हुई है। वो ये मान के चल रहे हैं कि ये गुट इंडिपेंडेंट हैं और वहाँ कुछ जो भी हो सकता है इमरान खान की हुकूमत कर रही है, लेकिन ये अभी समय लगेगा, लेकिन भारत अपनी नाराजगी तो जाहिर कर चुका है।
ये थे जेएनयू के प्रोफेसर ए.के. पाशा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। उन्होंने वहां एक बार फिर देश को 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य का जिक्र किया। इसे लेकर बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा से बात की और पूछा कि इस लक्ष्य के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं।
देखिए, $5 खरब अगर मैं भारतीय रुपए में बात करूं, तो आज के दिन में ये लगभग 68 रुपए है, तो 340 लाख करोड़ रुपए बनता है। और अगर 2024-25 के अंत तक जो अनुमान है वो लगभग 75 रुपए $1 का भाव पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, तो उस हिसाब से वो 375 लाख करोड़ रुपए बनता है। तो जब हम लोग कहते हैं कि $5 trillion, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो 340 लाख करोड़ से 375 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अब आपका अगला सवाल ये है कि यहाँ पर अभी की स्थिति क्या है, तो अभी लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी अपने भाषण में कहा था कि इस मुकाम तक पहुंचने में हमें काफी साल लगे। $1 trillion हमें 55-60 साल लग गए, फिर उसके बाद 5 साल और लगे जिसमें हमने 1 trillion और जोड़ा, और अब अगले 5 साल में इसे हमने 5 trillion तक पहुंचाना है। तो जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, जब आप 375 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि क्या लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, क्या लोगों की जो हम लोग कहते हैं जिसको गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या में कमी आएगी, क्या देश में भुखमरी कम होगी। ये सारे सवाल हैं जो $5 खरब की बात है उससे जुड़े हुए हैं, और इन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिल जाता है तब तक हम $5 trillion पे ही टिके नहीं रह सकते। हमें ये भी सोचना है कि उसका मतलब एक आम आदमी के लिए क्या है।
जी, बजट में 5 खरब के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कुछ खास किया गया है?
देखिए, सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही है कि 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जो होता है, बुनियादी सुविधाओं पर जो निवेश करने की बात कही गई है, इसके कई मायने होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि कई तरह के उद्योगों को ये प्रोत्साहन देता है, चाहे वो सीमेंट की बात करें, चाहे सरिया की बात करें, या पेंट की बात करें, या ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिनको ये बढ़ावा देता है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनते हैं, कई लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है। जब इस तरह का हम लोग निवेश करने की बात करते हैं तो बाकी जो निजी निवेशक हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी एक मौका बनता है कि वो आकर के यहाँ पर निवेश करें। तो बजट में सबसे पहली जो सबसे बड़ी बात जो कही गई कि $100 billion की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर एक बात कही गई है। दूसरा उसमें ये कहा गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें। देखिए, लगभग 65% आबादी हमारी गाँव में रहती है, अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है, किसानी बेहतर नहीं होता है, तो आपके लिए ये $5 खरब के लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। तो गांव, गरीब और किसान, इन तीनों की स्थिति बेहतर कैसे की जाए, इसके लिए भी बजट में कहा गया है कि गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कही गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही गई है। तो ये सारे प्रयास जो है वो इसलिए है कि अर्थव्यवस्था में जिन जिन क्षेत्रों का योगदान है उन क्षेत्रों की स्थिति बेहतर हो, वहां पर उत्पादकता बढ़ेगी, तो उसका सीधा सीधा असर आपके अर्थव्यवस्था के आकार पर।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। और अब आज के अखबारों की बात दिनेश उप्रेती के साथ। जी दिनेश जी।
जी वासिल जी, वर्ल्ड कप में भारत की श्रीलंका पर जीत और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 5वीं सेंचुरी को लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
जी, हमारी पन्ने की भी लीड खबर जो है bbchindi.com की, वो भी यही है, और आदेश कुमार गुप्ता का आलेख है, किसी मिशन पर है हिटमैन रोहित शर्मा।
जी, और कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार पर संकट की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। कल कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायकों ने अपने इस्तीफे स्पीकर को सौंप दिए थे और बाद में राज्यपाल वजूभाई वाला से भी मुलाकात की थी।
इससे पहले भी डिटेल रिपोर्ट सुनवाई है इमरान कुरैशी की।
जी, इससे पहले एक और कांग्रेस विधायक आनंद सिंह ने भी 1 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके एक सुरक्षाकर्मी के आगरा में एक टोल कर्मचारी के साथ कथित मारपीट करने और सांसद के खिलाफ FIR की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर लगाई है।
जनप्रतिनिधियों की इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नेपाल सरकार ने तिब्बती समुदाय को दलाई लामा का जन्मदिन मनाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। अखबार ने नेपाल के गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार ने काठमांडू में दलाई लामा का जन्मदिन समारोह नहीं मनाने दिया। इसके अलावा एक और खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की जगह कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए युवा चेहरे की ज़रूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी पर दिए गए उस बयान को पहले पन्ने पर छापा है जिसमें कहा गया है कि एनबीएफसी का बुरा दौर खत्म हो चुका है लेकिन सरकार इन पर करीबी नज़र रखे हुए है। कल वाराणसी के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी कई अखबारों की सुर्खी बना है जिसमें उन्होंने कहा कि बजट की आलोचना करने वाले पेशेवर निराशावादी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है और सरकार के इरादे पर शक करना निराशावादियों का काम है।
जी बहुत शुक्रिया दिनेश जी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खास रिपोर्ट, 50 डिग्री तापमान में जीना कैसा होता है, काम करना कैसा होता है, इसका जवाब वो मजदूर दे सकते हैं जो इन स्थितियों में काम करते हैं। भारत के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूर ऐसी स्थिति से रूबरू होते हैं। बीबीसी संवाददाता आनंद प्रकाश ने ऐसे मजदूरों की तकलीफें जानने के लिए उनसे मुलाकात की। सुनिए उनकी एक खास रिपोर्ट।
ये उस काम की आवाज है जो 120 डिग्री सेल्सियस तापमान की जमीन पर खड़े होकर किया जाता है। ये मजदूर दिन रात लकड़ी की चप्पलें पहनकर ये काम करते हैं क्योंकि इस तापमान पर सामान्य चप्पलें जल जाती हैं। लेकिन इस काम का इनके शरीर पर क्या असर पड़ता है, ये सुनिए भट्टे पर काम करने वाले ऐसे ही एक मजदूर राम सूरत से।
पूरा जून चमक के गर्मी पड़ी, तेज हो गई गर्मी, जब इतना मुश्किल है तो और हो जाएगा, तो और मुश्किल दिक्कत हो जाएगी, आदमी बीमार पड़ने लगेंगे। अभी बीमार है ही हैं, अब इसमें मजबूरी बस किया जाता है काम, और किसी की हिम्मत थोड़ी पड़ती है इसमें। 5 मिनट इस पर जाने के लिए भारी गिरेगा, ड्यूटी पर नहीं रहते तो ठीक रहता, जल इस पर जाते हैं जो गर्मी लगती है तो दिक्कत होने लगती है।
क्या दिक्कत होने लगती है?
हर दिक्कत पेशाब में वही जलन होने लगती है, और ज़्यादा पानी मत कम पियो पानी तो वही पेशाब सफ़ेद होने लगता।
संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा गर्मी में काम करना जानलेवा हो सकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतीहर मजदूर श्रवण सिंह 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में हर रोज काम करने के लिए मजबूर हैं।
गर्मी अब के वर्ष तेज रही साहब, हर साल से दिक्कत क्या काम, अब कल बच्चों ने काम करा तो गर्मी तो पड़ी, लेकिन ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जैसी अब के वर्ष पड़ी है। तो लड़की को रात उल्टी दस्त हुए, दवाई दिलवा के लाया हूँ अब, तो ये कमजोरी बन जाती है, काम करने की भी हमारी मजबूरी है, काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे पेट के लिए कहाँ से पैदा होगी।
बढ़ती गर्मी ने सड़क किनारे चाय की दुकानों और गाड़ी ठीक करने वालों की रोजी रोटी पर असर डालना शुरू कर दिया है। मोटरसाइकिल ठीक करने वाले मोहम्मद मुस्तकीम सैफी हर साल बढ़ती गर्मी की वजह से काम नहीं मिलने से निराश नजर आते हैं।
दुकान में तो आते ही नहीं, कल नहीं दूबर होता, रोड आग उगलता है, जब रोड पर इतनी लपटें जैसी लगती है, ऊपर से लू चलती है, तो इसलिए हाल से कहाँ काम आता, सुबह शाम जरा हमारा काम आता, उससे अपने मजदूरी करते, बच्चे पालते हैं।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े निवित कुमार इस रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए समस्या के समाधान की ओर इशारा करते हैं।
ऐसे माहौल में 50 डिग्री के टेम्परेचर में नीचे जहां आपके 600-700 डिग्री टेम्परेचर है, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और रोजगार जाने की संभावना है वो सच में भी हो जाएंगी ऑन द ग्राउंड। परेशानी बड़ी जटिल है, लेकिन ये इस सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इस सेक्टर को मैकेनाइजेशन की तरफ ले जाएं, जो मजदूर है हम उनको ट्रेन करें कि नए नए मशीन से फीडिंग करें, ब्रिक बनाएं, जिससे कि जो ये धूप का ऊपर उनके प्रभाव पड़ता है वो कम से कम हो, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर के लिए अपने आप को बदले और सिद्ध करें कि आने वाले समय में भी हम सर्वाइव कर सकते हैं।
भारत में नए रोजगार पैदा करना अभी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक समस्या बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बढ़ती गर्मी इन पारंपरिक रोजगारों के लिए खतरा पैदा करेगी तो ऐसे रोजगारों में लगे लोग अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे।
अनंत प्रकाश, बीबीसी बागपत।
बात वर्ल्ड कप की करें तो भारतीय टीम का धमाल जारी है। भारत ने कल श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। आखिरी लीग मैच में मिली जीत ने फैंस को भी खुश कर दिया। मैच के बाद लीड्स में बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने कुछ फैंस से बात की।
हम इंडिया पटना से हैं।
पटना से हैं
जी।
मैच देखने आए
जी।
कैसा मजा आ रहा है कि नहीं?
बहुत मजा आया।
आज के मैच में क्या लग रहा था?
आज के मैच में तो शुरू से पहले से जान रहे थे कि आज इंडिया ही जीतेगा।
क्यों लग रहा था ऐसा?
ऐसा अंदर से फीलिंग था कि इंडिया ही जीतेगा।
ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीतेगा?
हाँ, इंडिया ही जीतेगा।
इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है जिसके कारण लगता है कि नहीं, ये फाइनल जीतेगा।
फाइनल
लग रहा है?
एकदम फाइनल।
इंडिया और इंग्लैंड मजबूत ओपोनेंट?
इंडिया के सामने कोई भी हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बुमराह है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, रोहित है, विराट कोहली है और हार्दिक पांड्या है। इसके सामने में हमारे पास कोई नहीं है। और अब महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे पिलर हैं, वो इस वर्ल्ड कप को जिताएंगे।
और अब आदेश कुमार गुप्त से जान लेते हैं कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ कैसे हासिल की जीत।
लोग मनाएंगे बर्थडे और क्या, हम बर्थडे में क्या बोला जाता है? हैप्पी बर्थडे, यही तो बोला जाता है। बस ड्राइव में शायद केक कटिंग होगा, फोटो वोटो भेजेंगे आप।
ये शब्द है भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के, जिनके शतक की वजह से भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। और आज भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी को उनके 38वें जन्मदिन की बधाई भी जोर शोर से देगी ही। साथ ही कल ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार से ये भी तय हो गया कि भारत पहले सेमीफाइनल में 9 तारीख दिन मंगलवार को मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड से और 11 तारीख दिन गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भिड़ेगा। कल उम्मीदों के अनुरूप भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। भारत के सामने जीत के लिए 265 रनों का लक्ष्य था, जो उसने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के 103 और केएल राहुल के 111 रनों की शतकीय पारी की मदद से 43.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एंजेलो मैथ्यूज के 113 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 264 रन बनाए। उधर कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में उम्मीदों के विपरीत दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 326 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वह डेविड वार्नर के 122 रनों के बावजूद 49.5 ओवर में 315 रन पर सिमट गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 325 रन बनाए। वहीं विंबलडन में कल दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, तीसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल और 8वीं वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी पुरुष एकल वर्ग में अपने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में पहुंच गए। महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी, 11वीं वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स, 6ठी वरीयता हासिल चेक गणराज्य के पेत्रा क्विटोवा और 19वीं वरीयता हासिल ब्रिटेन की योहाना कोंटा भी अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रही, लेकिन 4थी वरीयता हासिल नीदरलैंड्स की केके बर्टेंस हार कर बाहर हो गई। और आपसे विदा लें उसके पहले मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच 9 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा, वहीं दूसरा सेमीफाइनल 11 जुलाई को बर्मिंघम में होगा। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी परमाणु समझौते को बचाने के लिए यूरोपीय देशों के साथ बातचीत की संभावनाएं तलाशने के लिए राजी हो गए हैं। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में हजारों की संख्या में लोगों ने एक बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में जल्द सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मैक्सिको पुलिस ने एक मकान में कैद 24 अप्रवासियों को बचाया है। मध्य अमेरिकी देशों के ये अप्रवासी मकान में 3 हफ्तों से कैद थे। ब्राजील के मशहूर गायक और गिटार वादक जोआओ गिलबर्ट का रियो दो जेनेरो में निधन हो गया है। गिलबर्ट 88 साल के थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।